السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا عملو صالح. یہ خوشخبری پتہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے، کوئی اسپیشل ہی بندے ہوں گے. کس چیز کی؟ ذالکا، یہ پچھلی بات کی طرف اشارہ ہے. یہ جو جنت کی، یہ روضات الجنات، اور جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا. انسان کی چاہت بھی نا ایک لمٹ تک ہوتی ہے. ہم کتنا بھی چاہ لیں، آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمیں تو اپنی چاہتوں کا بھی پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی دیر دعا مانگ پاتے ہیں. رمضان ہے یا حج ہے، ہم کتنی دیر دعا کر پاتے ہیں؟ گھنٹہ کر لیں گے، 2 گھنٹے کر لیں گے، اس کے بعد تو دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. بس ہماری تو اتنی سی چاہتے ہیں، اتنی چھوٹی، کیونکہ ہم خود بہت چھوٹے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس چاہت کے علاوہ دے گا، اور یہ اس کا فضل ہوگا. جو مانگا اس کے بھی علاوہ دیا، اس سے بھی زیادہ دیا. تو ہم تو جان بھی نہیں پاتے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، ہمارے مانگنے کے سوا ہمیں دیتا ہے. ہم نے سب چیزیں تو نہیں مانگی. آنکھیں کس نے مانگی؟ ناک کس نے مانگی؟ پتہ نہیں ہمارے اندر کون کون سے اعضاء کام کر رہے ہیں، وہ کس نے مانگے؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں مانگے. اللہ مجھے معدہ دے دینا، اللہ مجھے گردے دے دینا، اللہ مجھے آنتے دے دینا، دل میرے صحیح ہو، لنگ، کس نے مانگا؟ اللہ اکبر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے گا جو وہ چاہیں گے. چاہت لمیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ انسان چاہ چاہ کے بھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو اور مانگو اور مانگو. آخری جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور مانگو. وہ مانگ مانگ کے بھی بس اب مانگ بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں جو دنیا ہے اور اس سے 10 گنا، پوری دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں عطا کرتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی نوازش کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یہ ہے جس کی بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو. یہ اسپیشل بندے ہیں کون سے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پلیز اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور آپ کو بھی. یہ کہتے ہیں نمبر ون کس پہ فوکس کرنا ہے؟ نمبر ون ہمارا فوکس ہوگا ایمان کے اوپر، ایمان پہ. میرا ایمان کتنا ہے، کس لیول کا ہے، کتنا مضبوط ہے؟ مجھے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جنت از ناٹ فری. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی نا، ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ. اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو، ساروں کے لیے نہیں ہے، یہ فری نہیں ہے، فری فار آل، جو مرضی جنت لیتا جائے، سارے چلو جنت میں چلے جاؤ، بھیڑ چال ہے، جس نے جو مرضی کیا ہوا ہے گھستا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ جنت اسپیشل لوگوں کو دے رہا ہے جن کے پاس نمبر ون ایمان. تو چیک یور ایمان. ایمان بھی ایک لیول کا نہیں رہتا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے. یہ جو ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں نا، ہمارا ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ہم فیل کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر دل کی دھلائی ہو رہی ہے. 2 ہفتے 4 ہفتے نہ سنیں، پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے، ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ گر رہا ہے نیچے. ایمان کو بڑھانے والی کون سی چیزیں؟ اور फिर आमिलु सालिहात, फिर उसके बाद सौले अमल के ऊपर देखना, तो फिर प्लीज वो भी ऊपर ऊपर से नहीं देखना, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नहीं, फिर हर सल आखिरा को याद कर लीजिएगा, जो हमने ये आयत पढ़ी है इसको याद कर लीजिएगा कि क्या मेरा अमल साले भी हो रहा है या नहीं, मैं किस खेती में अपने अमल को लगा रही हूँ, मैं किसी के साथ नाइसली बात भी करती हूँ तो क्यों कर रही हूँ। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया लोगों के साथ अच्छी तरह बात कर, ये नहीं कि हाँ वो कहेंगे कितनी पोलाइट है, इसका अखलाक कितना अच्छा है, नहीं कि मुझे बुरा लगता है ना इस तरह, अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो बुरा लगेगा, नहीं मेरे अल्लाह का हुक्म है ये, अखलाक बड़ा भारी तुलना है अमालनामे में, अखलाक में अच्छे अपने अच्छे करूं, ठीक है, कितना फर्क पड़ गया, अमले साले मेरे किस दर्जे के हैं, उनमें कितना इखलास है और कितने मेरी जिंदगी में साले अमल हो रहे हैं, मैं किधर लगा रही हूं अपनी लाइफ को, अपनी इन सांसों को, ये जल्दी खत्म हो जाने वाली है, इनसे मैं अपनी आखरत की खेती में जल्दी जल्दी बीज डाल दूं और उसकी निगहदाश्त भी करूं ताकि मैं उसकी फसल वहां काट सकूं, और अगर इसमें कुछ भी ना बोया, ना इसकी हिफाजत की, बो दिया तो उसके बाद हिफाजत नहीं की, वहां पे जाके क्या होगा, इसको कीड़ा अगर लग गया, नियत में फतूर आ गया, रियाकारी आ गई, उसके बाद कीड़ा लग गया तो वहां पे क्या काटूंगी। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कह दीजिए मैं नहीं मांगता तुमसे कोई भी अजर, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता कि तुम मुझे कोई फीस दो, कोई कोई मुझे पैसे इस तरह दो, मेरी कोई बड़ी इज्जत करो, मेरे साथ ऐसे सलूक करो, ये करो, मैं कुछ भी नहीं तुमसे मांगता, कोई लीडरी नहीं मांगता, कोई कोई वो लोग कहते थे ना बस इनको तो शौक है भाई लीडर बनने का, इनको तो शौक है अपने बड़ा बनने का शौक हो गया, वो अक्सर ऐसे इल्जाम लोगों पे लगाए जाते हैं ना, उन्होंने तो दुनिया बनानी है, पैसा बनाने का चक्कर है सब कुछ, कहते देते हैं ना इतने आराम से कह देते हैं, इसीलिए इस क्लास की कोई फीस नहीं है, कोई ये ना समझे कि भाई पैसा बनाने का इनका तो चक्कर है, नहीं, कुछ भी नहीं मैं तुमसे अजर चाहता, वो इज्जत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो तब भी उसके अपने कर्म है, उसका अपना अमल है, वो कोई देगा तो वो अपनी खेती में कुछ लगा रहा है, नहीं देगा तो भी अपनी खेती में, वो भी नहीं चाहिए, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर सिवाय मोहब्बत के कराबतारी में, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में चार अकवाल है, पहला कौल जो सबसे ज्यादा इसके बारे में राजे है, जो बेहतरीन है, वो ये कि मोहब्बत रिश्तेदारी की, यानी रिश्तेदारी की खातिर, को अब कराबतदारी की खातिर मोहब्बत, तो वो रिश्तेदारी की मोहब्बत ही रखो, यानी अगर तुम मेरे लिए तो कुछ और ना करो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, अगर कम से कम रिश्तेदारी का ही पास कर लो, उसकी मोहब्बत का तुमसे एक तरह से वास्ता है, वो उस ताल्लुक का वास्ता है तुम्हें, कम से कम तुम मेरी मुखालफत तो ना करो, मेरे रास्ते में रोड़े तो ना अटकाओ, रहम के रिश्तों का ही पास कर लो, क्योंकि दौरे जाहिलियत में इस चीज का बड़ा एहतराम किया जाता था, और इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरैश का कोई कबीला, आपको पता है ना कुरैश तो बड़ी है ना, उसके नीचे सब ट्राइब्स हैं, कुरैश एक ट्राइब है, फिर बनू हाशिम, बनू और भी ट्राइब्स थे, जो भी सब ट्राइब्स हैं उनके अंदर हर एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी थी, क्योंकि ऊपर जाके तो कुरैश बन जाता है ना, कहीं किसी की पांचवी पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी निकल आई, कहीं किसी की सातवीं पुश्त में निकल आई, तो तुम अपने रिश्ते का ही पास कर लो और मेरी दुश्मनी छोड़ दो, ये मुझे ये काम करने दो, समझ आ गई बात, तो इस चीज का वास्ता दिया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, एटलीस्ट मेरी मुखालफत तो ना करो, एटलीस्ट मुझे ये काम तो करने दो, और दूसरा इसका माना क्या है, दूसरा इसका माना ये है कि कुर्बा से मुराद अल्लाह ताला का कुर्ब। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम अल्लाह ताला की कुर्ब के लिए करो, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह ताला के कुर्ब की खातिर तुम ये करो, उसकी मोहब्बत में करो, मुझे नहीं अपने लिए कुछ चाहिए। ठीक है, तीसरा माना आपस में कराबतदारी के लिए। कुर्बा का माना लोगों की आपस में सिला रहमी, ये तुम मुझे तो कुछ ना दो मगर आपस में तो कम से कम रिश्तेदारी बनाओ, आपस में कम से कम सिला रहमी के साथ एक दूसरे के साथ रहो। ये पहले माने से बहुत करीबतर है। और आखिरी एक माना ज्यादातर, एक फिरका है जो ज्यादातर इस माने को लेता है कि अहले बैत से, यानी कुर्बा से मुराद अहले बैत हैं, मैं सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल करता हूँ, इल्लल मोहब्बत, सिवाय मोहब्बत के फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत की, मेरे रिश्तेदारों की। लेकिन ये माना इतना सही यहाँ पे नहीं बैठता, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत का क्या सवाल करना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ते थे, तो उनके रिश्तेदारों को क्या छोड़ेंगे, उनसे दुश्मनी में कुरैश मक्का कोई कम नहीं थे। और फिर दूसरी, वो लोग जो ये लेते हैं कि अहले बैत, वो कहते हैं कि हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन, हुसैन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ही है अहले बैत, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, ये इनके साथ बस अच्छाई, इनके साथ मोहब्बत रखो। तो बात ये कि अहले बैत तो सिर्फ ये नहीं है, उनमें बहुत सारे और लोग आ जाते हैं। और मक्की दौर में तो, अगर ये तफसीर समझी जाए, तो मक्की दौर में तो हजरत फातिमा की शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर कहाँ उनकी मोहब्बत का वास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना था। और फिर ये कि मैं तुमसे और कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ ये मांगता हूँ कि इनके साथ मोहब्बत करो, ये तो बहुत छोटा सा सिला है अपनी दावत दीन का, मैं सिर्फ तुमसे ये मांगता हूँ, तो ये तो बहुत छोटी सी कीमत मांगी गई। ये इतना बात नहीं समझ में आती कि ये इसकी तफसीर हो सकती है, लेकिन ये चार अकवाल कहे गए हैं और पहला ही सबसे ज्यादा बेहतरीन है। बाकी ये नहीं कि अहले बैत की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए या उनकी इज्जत नहीं, जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में शामिल है ये बात कि उनकी अहले बैत के साथ भी मोहब्बत की जाए। किसी भी शख्स के साथ मोहब्बत होना आप उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक आप उसकी जो घर वाले हैं उनके साथ ना मोहब्बत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक तो ये कुरान और एक मेरे अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी ताजीम, ये अहले सुन्ना वल जमा का अकीदा है, तो लिहाजा इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन वो अहादीस डिफरेंट है, वो अहादीस डिफरेंट है जिनमें अहले बैत के साथ मोहब्बत की बात की गई, इस आयत से यानी ये साबित नहीं होती, लेकिन बाकी अहादीस से साबित होती है। और बेशक अहले बैत की मोहब्बत हम सब के दिलों में होनी चाहिए। वह मई यकतरफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना, और जो कोई कमाई करेगा, अब यहाँ पे असल में वमई या अमल, जैसे हम कहते हैं ना अमले साले, वो उसी की बात रही, लेकिन इख्तराफ लफ्ज आया, जख्म की खाल को कुरेदना, ये भी इसमें आता है, दरख्त की खाल छीलना, ये भी इख्तराफ है। तो मतलब है कि कमाई करना, कसब करना, और आपको पता है जख्म का छिलका बार बार आप अगर कुरेते जाते हैं तो जख्म कभी भी ठीक नहीं होता, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह नेकी को एक नेकी के बाद दूसरी होती है, उसके बाद तीसरी होती है, उसके बाद चौथी होती है, यानी नेकियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। यहाँ पे ये लफ्ज लाया गया अमल की जगह, कि जो अच्छा अमल करेगा तो हम उसकी इस खूबी में इजाफा कर देंगे, उसकी नेकी में इजाफा कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमल एक होता है, लेकिन उसके अंदर जब इजाफा अल्लाह ताला कर देता है, तो वो इस एक अमल की जजा कितनी गुना बढ़ जाती है, कितनी गुना उसके अंदर इजाफा हो जाता है। एक खजूर का जब बहुत पहाड़ के बराबर हो जाए, कोई नेकी 700 गुना फल लाती है, कोई नेकी 10 गुना लाती है, कोई नेकी 1000 गुना लाती है। और आपको पता है बाजार की जो दुआ है, वो पहले भी आपको मैंने बताई भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा हय्युन ला यमूतु बिहदिहिल खैर कुल्लु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो 10 लाख नेकियां मिलती हैं उसे। तो यानी नेकियों में भी ना हर एक नेकी एक पावर की कह लें या एक अजर की नहीं होती, हर नेकी के डिफरेंट, जैसे दरख्त है, सब दरख्तों के किसी कोई दरख्त भर भर के फल लाता है, कहीं पे कम फल लगता है, फल उस पे भी लगता है लेकिन कम लगता है, तो कोई नेकी होती है इतनी ज्यादा उसका सवाब है। अब आप देख लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर दिन 1000 नेकियां करने से आजिज है, क्या तुम में से कोई हर दिन 1000 नेकियां करने से आजिज है? तो सहाबा ने कहा कि 1000 नेकियां कौन कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी 100 दफा सुभान अल्लाह कहे उसके लिए 1000 नेकियां लिख ली जाती है। तो 100 दफा मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 गुना यानी उसका जा रहा है, 1000 बन गई। इस तरह किसी चीज के ऊपर 1 लाख नेकियां, किसी पे 10 लाख नेकियां। अब रोजा है वो अल्लाह ताला ही उसकी अजर देगा, रोजा एक है लेकिन उसकी जजा इतनी बड़ी है, बताया ही नहीं गया, वहां जाके पता चलेगा। लेकिन बात वही है कि हम अल्लाह ताला हमें वो वाली दुआ मांगने की जरूरत है, रबना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना। अल्लाह दुनिया को ही हमारा सबसे बड़ा गम और हमारी इल्म की इम्तहाना बना दे। लम अक्सिम लना मिन खशियती का, इसके अंदर ये पार्ट आता है, हम मसनून दुआओं में देखेंगे। अल्लाह दुनिया को हमारा सबसे बड़ा गम ना बना दे, हमें इतना इसी का गम लगा हुआ है, तो हमने ये नेकियां किधर से कमाने के लिए एफर्ट करेंगे हम, जबकि अल्लाह ताला उनमें इजाफा करता है, उनमें देखिए बढ़ोतरी करता है। हर नेकी का अल्लाह ताला ने कितनी कितनी गुना अजर बता दिया, फिर भी तवज्जो कम इसके ऊपर रहती है। तो 10 गुना भी हर एक की नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, अपने हालात पे भी डिपेंड करता है। एक बंदा है वो 100 में 100 रुपए उसके पास, उसमें से वो 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, और एक है जिसके पास 1 अरब है, उसके अंदर से वो 1 रुपया खर्च करता है। डू यू थिंक दोनों का रिवॉर्ड एक जितना है? हरगिज नहीं। एक के पास 100 था, उसने उसमें से 1 निकाला, एक के पास 1 अरब है, उसके अंदर से उसने 1 निकाला, दोनों के रिवॉर्ड में बहुत फर्क है। हालात पे भी डिपेंड करता है, खलूस पे भी डिपेंड करता है, किसने कितने इखलास के साथ, कितने शौक के साथ, कितनी मोहब्बत में अल्लाह के लिए दिया। आपकी मोहब्बत भी काउंट करती है, या आपको कितना शौक है अल्लाह के रास्ते में देने का, कितनी खुशी से आप दे रहे हैं। एक ज़कात भी जब इंसान खुशी से देता है, एक होता है देता तो है लेकिन बस इतना दिल नहीं है, बस दूसरे ने कह दिया, आप क्या करें, डोनेशन देना पड़ रहा है, जान ही नहीं छूटेगी दिए बगैर, दिया तो उसने भी है, क्या करें, आप बस जान छोड़े ये हमारी, रोज मांगने बैठ जाते हैं, तो अब नहीं देंगे तो अब चारा नहीं है कोई, और निकल ही नहीं सकते, वरना कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। तो हमारी देखिए नियतों में भी और हालात में भी फर्क होता है, काम वही है, खलूस में भी किसी का खलूस बहुत से आता है, किसी का कम है। इन अल्लाह गफूर उन शकूर, बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है शकूर भी है। गफूर यानी अल्लाह ताला के बहुत, ये दोनों प्यारे नाम, गफूर है, नेकी करोगे भी तो उसके अंदर भी कोई गलती हो जाएगी, या कोई गुनाह भी हो सकता है इंसान से, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला। और छोटी सी भी नेकी है ना, उसका भी बड़ा कदरदान है। गुनाह बड़ा भी है तो बख्श देता है, गफूर है वो, इसमें भी मुबालगा है। और शकूर, नेकी छोटी सी भी है तो उसकी कदरदानी करता है, बंदे को उसकी उम्मीद से भी बढ़ के नवाजता है, उसके गुमान से भी बढ़ के नवाजता है। उसने सोचा भी नहीं होता मुझे ये सब मिल जाएगा। तो देखिए, अब एक एग्जाम्पल उसी से बात है ना, कि इंसान एक अमल को, जो बजाहिर बजाहिर दुनियावी अमल होता है, लेकिन उससे भी आखरत की नीयत करके हर सुल आखिरा में अब कमाई कर लेता है। कहते हैं कि मैं तमीमुद्दारी से मुलाकात के लिए गया, तो वो खुद अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ कर रहे थे, हालांकि उनके अहले खाना वहां पे थे। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या कोई ये काम नहीं कर सकता? और तो फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मुसलमान अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ करता है, फिर उसको खिलाता है, तो उसके लिए हर दाने के बदले एक नेकी लिखी जाएगी। अल्लाह हू अकबर। अब ये वो ही कर सकता ना जिसको इल्म भी कोई हो, और जिसको कोई इल्म ही नहीं है किस बातों से अल्लाह राजी होता है, कौन बातें हैं जो सवाब की हैं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे ज्यादा सवाब दिला सकती हैं, किस तरह मैं अपनी नीयत को बेटर कर सकती हूँ, ये तो सारा इल्म से आता है ना। किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना बढ़ा देता है, वो कितना देने वाला है, वो कितना ज्यादा कदरदान है। अब एक बंदा बजाहिर ये दुनिया का काम कर रहा है, अपने घोड़े को चारा दे रहा है, उसके लिए साफ कर रहा है, जाहिर एक घर का काम है, लेकिन वो फिर भी उससे आखरत की नियत करके उसे आखरत को कमा सकता है। अल्लाह हू अकबर। हमें ये इस आयत से पता चला कि एक तो बशारत किन के लिए है, उसकी क्या शरायत है जन्नत की बशारत, दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी नबी ने भी अपनी कौम से कोई अजर नहीं मांगा, और यहाँ पे जो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा है उसके अंदर हम ये नहीं लेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगते थे लोगों से, क्योंकि ये आपकी शान के लायक नहीं है कि आप लोगों से कहें कि मुझे तो कोई और अजर नहीं चाहिए, बस ये अजर चाहिए कि तुम मेरे रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करो। जब आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो उनके लिए क्या मांगे? अच्छा, फिर हमें ये पता चलता है कि जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें किस तरह से इजाफा करता है, और इजाफा में अजर का इजाफा भी है और तौफीक मिल जाने का भी है, कि और तौफीक मिल जाती है, और ज्यादा मिल जाए, और नेकियां करना आसान हो जाता है, और नेकी के और दरवाजे भी अल्लाह ताला खोल देता है। आप देख लेना, आप मैं किसी से बात की तो मैंने उनको यार मुस्लिम थी, तो उन्होंने कहा भाई आप इस तरह नमाज पढ़ें तो कितनी दफा आपको पढ़नी पड़ती है, आप रोज पढ़ते हैं क्या? मैंने बताया कि भाई हाँ, इस तरह 5 दफा पढ़नी पड़ती है, तो और रोजाना पढ़ते हैं हम, तो उसके लिए इतनी मुश्किल बात थी कि हाय, 5 दफा आपको नमाज पढ़नी पड़ती है, 5 दफा आपको टाइम के साथ पढ़नी पड़ती है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप जो नमाज पढ़ता है उसके लिए तो आसान ही है, अल्लाह ताला ने देखे, जब आप कोई नेकी करते रहते ना, अल्लाह ताला आपके लिए फिर आसानी पैदा कर देता है। अब किसी को आप कहते हैं कि भी मैं 2.5 घंटे क्लास के लिए बैठती हूँ, अब उसके लिए तो इतना मुश्किल है कि हाय इतना टाइम, और जब इंसान करता रहता है नेकी, अल्लाह ताला उसके लिए इतनी सहूलत पैदा कर देता है कि अब लोग कहते हैं कि जी हमें इस दिन तो हमें लगता ही नहीं है, दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है अगर छुट्टी कर दी जाए, हमें हमारे लिए तो ये एक ऐसी आदत बन गई है कि हमें जुमा जुमा ही नहीं लगता अगर हम उस दिन क्लास ना लें, तो उनको लगता है क्या कमी हो गई, उनके लिए बैठना बहुत आसान है, उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। तो जब आप कोई नेकी करते हैं ना, फौरी तौर पे हो सकता है आपको वो मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप उसको जारी रखते हैं तो वो नेकी आपकी आदत बन जाती है। फिर आप अगर उस नेकी को छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो आप उसको मिस करते हैं, या कभी रह जाए ना, छोड़ना तो नहीं कोई चाहेगा, लेकिन अगर कभी रह जाए किसी वजह से, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए या कोई ऐसी मसरूफियत हो जाए, तो दिल उस नेकी के बगैर उदास होने लगता है।